लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आप्रवासियों, शरणार्थियों और युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि शिक्षा पाने के उनके अधिकार का सदैव सम्मान किया जाए, जो एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्के एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभु प्रकाश महापर्व पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। कैथोलिक कलीसिया 6 जनवरी को एपिफनी या प्रभु प्रकाश का महापर्व मनाती है। उसकी पूर्व संध्या आइए हम चिंतन करें कि प्रभु प्रकाश महापर्व क्यों मनाया जाता है और यह हमें क्या संदेश देता है। प्रभु प्रकाश महापर्व सभी राष्ट्रों का पर्व है, क्योंकि इस दिन हम पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र के इस धरती पर साक्षात मानव रूप में प्रकट होने की खुशी मनाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त जो सभी राष्ट्रों के लिए सच्ची ज्योति बनकर आए, हम सभी को इस ज्योति से परिपूर्ण करना चाहते हैं। साथ ही वे हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम इस प्रकाश को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो अब भी अंधकार में हैं। एपिफनी पर्व को मनाने का मुख्य आधार है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पूर्व से आए 3 राजाओं को प्रकट होना। वे एक सितारे को देखकर उस गौशाले तक पहुंचे थे जहां बालक यीशु का जन्म हुआ था। तीनों विद्वान राजाओं ने वहां आकर बालक यीशु को दंडवत किया और उन्हें उपहार भेंट किए। 2025 वर्षों पूर्व लोग एक मसीहा की तलाश कर रहे थे। आज भी धर्म और जाति के नाम पर विभाजन, हिंसा और युद्ध के कारण लोग शांति की तलाश में हैं। हमारे ही देश में कुछ लोग चुपचाप अन्याय सहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि आज अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए अनेक राजनेता हैं, परंतु एक समय था जब कोई नहीं था। जो अमीर था वह और अमीर होता जा रहा था और जो गरीब वह गरीब। पीड़ितों की पुकार कोई नहीं सुनता था। उस समय के नबी लोगों को सांत्वना देते और विश्वास दिलाते थे कि बहुत शीघ्र एक मानव पुत्र जन्म लेगा जो आप सभी को अन्याय एवं अत्याचारों से बचाएगा और मुक्ति दिलाएगा। पर कौन है वह व्यक्ति? उन दिनों जहां गैर यहूदियों पर रोमी साम्राज्य का अत्याचार हो रहा था, उन असहाय लोगों का मंदिरों में प्रवेश निषेध था, यहां तक कि उन्हें वहां सर्वमान्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त जल पीने का भी अधिकार नहीं था। ऐसी भयावह स्थिति में नबी कहते थे कि तुम्हें बचाने के लिए एक मसीह जन्म लेंगे। नबी का यह संदेश उनके दिल में आशा जगाया और वे मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। अंततः एक स्वर्गदूत कुंवारी मरियम को पौत्र आत्मा से गर्भवती होने और मुक्तिदाता की मां बनने का संदेश दिया। मरियम पौत्र आत्मा से गर्भवती हुई और बालक यीशु को एक गौशाले में जन्म दी। बालक के जन्म के तुरंत बाद ईश्वर के दूत चरवाहों के सामने प्रकट हुए और उन्हें संदेश देते हुए कहा, आप लोगों को बड़े आनंद का संदेश सुनाते हैं, प्रेम और शांति का संदेश। दूसरी ओर यही सुसमाचार उन 3 राजाओं के लिए भी प्रकट हुआ जो पूर्व में रहते थे। प्रतिमाओं में उन्हें अलग अलग रंग एवं वेशभूषाओं में दर्शाया गया है, जो इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने इन राजाओं के माध्यम से स्वयं को संपूर्ण संसार के सभी वर्गों के लोगों की मुक्ति के लिए प्रकट किया। उन्होंने जाति और धर्म सब कुछ भुलाकर चरवाहों, दीनहीनों, गुलामों, पीड़ितों, असहाय लोगों और प्रत्येक इंसान की मुक्ति के लिए सारी सृष्टि के सामने अपने रहस्य को प्रकट किया। इसी प्रकाशना को एपिफनी कहते हैं। प्रभु प्रकाश महापर्व की पूर्व संध्या हम सबके लिए यह आवश्यक है कि हम ईश्वर के इस रहस्य उद्घाटन का अर्थ एवं संकेत समझें कि यह मेरे लिए क्या संदेश लेकर आया है। पूर्व से आए 3 राजाओं के उपहार बालक यीशु की मनुष्यता, ईश्वरता और राजत्व के प्रतीक हैं, जो हमारे लिए ख्रिस्ते आचरण की ओर बुलाहट है। तीन राजाओं ने जो उपहार बालक येसु को भेंट किए उनमें एक था सोना, क्योंकि सोने को धातुओं का राजा माना जाता था, अतः यह प्रभु येसु को संसार का राजा माने जाने का प्रतीक है। वे परमपिता के दाहिने विराजमान पिता ईश्वर के भेजे हुए राजा हैं। वे अंतिम दिन न्याय करेंगे कि हमने अपने भाई बहन के लिए क्या किया। दूसरा उपहार था सुगंधित लोबान। यह इस बात को दर्शाता है कि ईश्वर अति उत्तम एवं पौत्रतम है। गिरजाघर में हम जो सुगंधित लोबान का प्रयोग करते हैं वह एक धुआं है जो हमारी सारी भावनाओं को, प्रार्थनाओं को एवं श्रद्धाओं को ऊपर स्वर्ग के पिता तक ले जाता है। और तीसरा उपहार जिसको राजाओं ने बालक येसु को दिया वह है गंधरस। यह इस बात का संकेत है कि प्रभु येसु एक मनुष्य है और वे भी भूख एवं प्यास का अनुभव करते हैं। वे पापी से प्यार करते किंतु पाप से नहीं। उन्हें भी शैतान द्वारा पाप करने के लिए बहुत से प्रलोभन मिले, परंतु अपनी अंतरात्मा की आवाज से पापों पर विजय प्राप्त कर मानव होने का अर्थ साकार कर दिखाया। इसलिए वे भी अपने जीवन के अंतिम दिन मनुष्यों की तरह रोए, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। हमारे लिए इस पर्व को मनाने का अर्थ है प्रेम और शांति के संदेश तथा उनके प्रकट होने के सुसमाचार को मानवता के खातिर सभी लोगों तक पहुंचाना, कि प्रभु येसु आप और मेरे लिए भावनाओं से, वचनों से एवं कर्मों से जन्मे हैं। ईश्वर के साक्षात प्रकट होने का अर्थ है कि हम आपस में प्रेम भाव रखें तथा उनके राज्य की स्थापना में सहयोग करें। मसीह अपने आप को मात्र मानव पुत्र रूप में स्थापित करने नहीं आए, बल्कि मनुष्यों में निवास कर स्वर्ग राज्य की स्थापना करने आए, एक ऐसा राज्य बनाने जहां किसी को कोई पीड़ा ना हो, किसी की आंखों में आंसू ना बहे, जहां सब भाई बहन हों, सब समृद्ध हों, गरीब कोई ना हो, सब अपने समृद्धि को एक दूसरे को बांटने के लिए तैयार हो। अब हमें यह सोचना है कि हम में से प्रत्येक ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए क्या योगदान दे सकता है। एक ख्रिस्त परिवार में पिता अपने आप से पूछे कि क्या वह अपने परिवार में अपनी पत्नी तथा बच्चों की देखभाल करने में कोई लापरवाही तो नहीं करता। एक माँ परिवार में बच्चों को गलत संगति में पढ़ते या किसी सदस्य की बीमारी के कारण निराश होकर विश्वास खोने की स्थिति में तो नहीं है। बच्चे अपने आप से पूछें कि क्या वे अपने माता पिता को उचित सम्मान देते और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, अथवा छोटी छोटी बातों में अपनी नाराजगी दिखाकर माता पिता से दूर होने की कोशिश करते हैं। ख्रिस्ते होने के नाते हमें ईश्वर के राज्य की स्थापना करने का प्रयास सतत करते रहना चाहिए। हमारे रिश्तेदारों के बीच, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे कार्यक्षेत्र में और उन सभी लोगों के लिए जिनसे हम मिलते हैं, उनके लिए यही संदेश पहुंचाना है कि ईश्वर ये संपूर्ण संसार के राजा हैं, वे हमारे बीच निवास करते हैं और हमें अपने प्रेम, शांति एवं भाईचारा के राज्य विस्तार के लिए बुलाते हैं। आइए हम उनके राज्यत्व की चमक को अपने जीवन द्वारा सबों तक पहुंचाएं, मानवता के संदेश को हर जन जन तक पहुंचाएं। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभु प्रकाश महापर्व पर एक चिंतन सुन रहे थे और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
पूरब के हम राजा हैं, आए भेंट ले हम नवीन पाल किया उस तारे के संग नदिया पहाड़ हसी। पूरब के हम राजा हैं, आए भेंट ले हम नवीन पाल किया
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका कर्म का मर्म। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी करनी के अनुसार अपना संसार बनाता है। ईमानदारी और मेहनत से हर खुशी हासिल की जा सकती है। कुछ लोग आराम और सुकून की जिंदगी हासिल करने के लिए अपनी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब, ट्यूशन या कोचिंग सेंटर में काम करते हैं। जैसे यदि शिक्षक बच्चों को ज्ञान देकर कुछ धन अर्जित कर लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, परंतु यदि शिक्षक स्कूल या कॉलेज की अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज करके निजी ट्यूशनों पर ध्यान देते हैं, और ऐसा भी देखने को मिलता है कि शिक्षक टेस्ट में जानबूझकर होशियार बच्चे को भी फेल करके ट्यूशन पढ़ने के लिए उन्हें बाध्य कर देते हैं, तो वे नैतिक आधार पर गलत कार्य करते हैं। ऐसे शिक्षक पढ़ाने के नाम पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। किसी न किसी रूप में वे खुद पर ही कुल्हाड़ी चला रहे हैं, अपने ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक समय रहते संभल जाएं, वरना आज के नाटक के शिक्षक के समान उन्हें भी वह दिन देखना न पड़े। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है माइकल होजेस की लिखी नाटिका कर्म का मर्म।
अरे तो तू क्या मेरे को ऐसा वैसा टीचर समझती है? अरे अपने पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा ट्यूशन करने वाले सर के रूप में फेमस हूँ।
तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ज्यादा ट्यूशन करना कोई बहुत अच्छी बात है।
तो तू क्या समझती है जानकी, हमारे स्कूल का और कोई टीचर ट्यूशन नहीं करता है? अरे सारे टीचर ट्यूशन करते हैं और सभी ट्यूशन करने के लिए मरे जाते हैं।
मतलब कक्षा में नहीं पढ़ाते और ट्यूशन के चक्कर में रहते हैं।
तू तो बावलों जैसी बातें कर रही है। अरे आजकल तो अधिकतर टीचरों का यही हाल है, सभी कमाई के चक्कर में रहते हैं। रावण के इस जमाने में तू हरिश्चंद्र की बातें कहाँ कर रही है?
तुम तो एक शिक्षक हो, तुम्हें तो समझना चाहिए कि एक शिक्षक को कितना ईमानदार होना चाहिए और अपना काम कितनी ईमानदारी से करना चाहिए।
अगर टीचर अपना काम ईमानदारी से करेगा ना, तो वही फकीर की फकीर रहेगा। मैं भी अपना काम अगर ईमानदारी से करता ना, तो आज ये अपना खुद का घर नहीं होता, ये टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, ये सोफा और बैंक बैलेंस भी नहीं होता। चली मेरे को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने।
तुमने कभी इस बात को सोचा है, ईमानदारी की कमाई से मन को कितनी शांति मिलती है?
मन में शांति रख के अभाव में जीना भी किस काम का? ऐसी शांति से तो अच्छा है कि अशांति रह जाए।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक शिक्षक को कल के अच्छे नागरिक बनने वाले बच्चों को किस तरह से शिक्षा दे रहा है?
इस जमाने में ये सब सोचने का टाइम किसके पास है जानकी?
अरे जब शिक्षक का ही अपना चरित्र नहीं होगा तो वो बच्चों को चरित्रवान कैसे बनाएगा? माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाने भेजते हैं और उन्हें किस तरह से पढ़ाया जाता है?
तो तू क्या सोचती है, बच्चों के माँ बाप भी दूध के धुले हैं? वो सब भी अपनी अपनी और अपने अपने काम पर दो नंबर की कमाई करते हैं। शहर एक ऐसा तालाब होता है जहाँ एक मछली ही नहीं बल्कि सारा तालाब ही गंदा होता है।
लेकिन दो नंबर की कमाई का नतीजा भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है।
अभी तक तो कुछ बुरा हुआ नहीं, और अगर आगे कभी होगा भी तो देख लेंगे। अपने पास पैसे की कोई कमी है क्या?
पैसे से सब कुछ नहीं हो जाता, पैसा भी एक सीमा तक ही काम में आता है।
अरे पैसे की कीमत तू क्या जाने बावली, पैसे में कितनी ताकत होती है।
फिर भी पैसा सब कुछ नहीं होता है। अरे सुरभि बेटी, आकाश दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं गया है क्या?
हाँ मम्मी, क्रिकेट खेलने गया है।
ये लड़का जब देखो तब क्रिकेट खेलने में लगा रहता है, कभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है ये, या खेलता ही रहता है हर समय।
पढ़ता क्यों नहीं है, सुरभि खुद उसे बैठ के पढ़ाती है।
हाँ पापा, मैं खुद उसे पढ़ाती हूँ, पढ़ने के साथ साथ उसका खेलना भी तो जरूरी है।
कैसा पढ़ता है वो, मतलब पढ़ने में कैसा है वो?
जैसा क्रिकेट खेलने में होशियार है वैसा ही पढ़ने में भी होशियार है वो।
चलो अच्छा है, वरना अपने टीचर बाप की तो नाक ही कटा देता है। लोग कहते हैं कि बाप को देखो टीचर है, दूसरों को पढ़ाता है, और इसका खुद का ही बच्चा पढ़ने में फिसड दिए।
तो तुम आकाश को समझते क्या हो? तुम तो दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते हो, कभी अपने बच्चे की ओर भी ध्यान दिया है तुमने?
अरे जब सुरभि जैसी कॉलेज पढ़ने वाली बेटी है मेरी, तो फिर मेरे को आकाश पर ध्यान देने की क्या जरूरत है? सुरभि उस पे ध्यान भी देती है और उसे पढ़ाती भी है, और क्या चाहिए।
हाँ तुम्हारी तो फुर्सत हो गई।
अरे फुर्सत कहाँ हो गई जानकी, फुर्सत तो मेरे को तब होगी जब मैं उसे आईपीएस बना दूंगा।
बस लगे तुम उस पे अपनी इच्छा थोपने, जो माँ बाप खुद कुछ नहीं कर पाते वो अपनी इच्छा अपने बच्चों पे पूरी कराना चाहते हैं और दिन रात लगे रहते हैं उनपे अपनी इच्छा थोपने में।
हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। आकाश को क्या बनना है ये उसी पर छोड़ दिया जाए तो अच्छा होगा, फिर अभी वो 8वीं में ही तो है।
और अगर उसने क्रिकेटर बनने का सोचा तो फिर तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ बता दे रहा हूँ मैं, ना आईपीएस और ना क्रिकेटर।
नसीब भी तो कुछ होता है कि नहीं?
इसका मतलब ये भी नहीं कि नसीब के भरोसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए।
नहीं पापा, आकाश ऐसा नहीं है, वह अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत भी करेगा।
मेरी बेटी की तरह, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती है और इसके लिए मेहनत भी कर रही है। क्यों बेटी?
हाँ पापा।
अरे मोहन आओ भाई आओ।
और क्या हो रहा है?
बस जरा अपन दिमाग ठीक कर रहा था।
दिमाग ठीक कर रहे थे? अरे दिमाग कोई मशीन है जो बिगड़ गया हो और तुम उसे ठीक कर रहे हो?
अरे मोहन भाई, मशीन भी खराब होने के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन अगर दिमाग खराब हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल से ठीक होता है।
मगर श्याम भाई, हुआ क्या है ये तो बताओ।
मैं बताती हूँ भैया।
नमस्ते भाभी।
नमस्ते भैया। अपना आकाश है मासिक टेस्ट में फेल हो गया है, इसके लिए इनका दिमाग खराब है।
अरे अगर एक टीचर का बच्चा टेस्ट में फेल हो जाए तो दिमाग खराब ही होगा या फिर डिस्को करेगा।
एक टीचर का बच्चा पास होता रहे ये जरूरी तो नहीं है यार।
बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो मोहन भाई। अगर टीचर का बच्चा पूरे समय सिर्फ क्रिकेट ही खेलता रहेगा तो जरूर फेल होगा।
आकाश पूरे समय क्रिकेट नहीं खेलता पापा, पढ़ता भी है, उसे मैं खुद पढ़ाती हूँ।
सुन लो।
मगर उसका सारा ध्यान तो क्रिकेट में ही है। क्रिकेट तो ऐसे खेलता है मानो इंडियन टीम में कल ही उसका चयन हो रहा हो।
तुम्हें क्या पता, बच्चा पढ़ता भी वैसे ही है।
जब लाट साहब पढ़ते भी ऐसे ही हैं तो फिर फेल कैसे हो गए? इस घर की सुख सुविधा के लिए इतनी ट्यूशन करता हूँ उसका कोई मतलब ही नहीं है। बंद कर दूं ये ट्यूशन क्या?
हाँ पापा, इस जबरदस्ती की ट्यूशन बंद ही कर दें आप। आप एक टीचर होने के बाद भी नहीं समझ पाए कि आपका बेटा पढ़ाई करने के बाद भी क्यों फेल हो गया। आकाश फेल नहीं हुआ बल्कि फेल कर दिया गया है, ताकि फेल होने के बाद उसके टीचर को उसकी ट्यूशन मिल सके। आप भी तो ट्यूशन पाने के लिए बच्चों को ऐसे ही जबरदस्ती फेल करते हैं।
तुमने बिल्कुल सही कहा बेटी,
बिल्कुल सही कहा बेटी। अपनी ट्यूशन खोरी में मैं आज तक इस चोट को समझ ही नहीं पाया, लेकिन आज जब ये चोट मेरे को ही लगी है तब जाके समझ में आया है। सही में मैं बहुत गलत करता रहा अब तक।
मैं तो तुम्हें पहले से ही समझाती थी कि अपना काम ईमानदारी से करो, मगर तुमने कभी सुना ही नहीं।
अब तो सुधर जाओ श्याम।
अब तो सुधरना ही पड़ेगा यार। अब मैं बच्चों को फेल करना और ट्यूशन बुलाना छोड़ दूंगा। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी तरह उनके माँ बाप पे भी क्या बीतती होगी। जब खुद को चोट लगती है तब औरों की चोट का पता चलता है।
अब तुमने की ना समझदारी की बात।
अब मैं ऐसा ही कोई काम नहीं करूंगा जिससे बाप के बुरे कर्मों की सजा उसके बेटे को मिले।
कर्म का मर्म। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थी प्रेरणा दुबे, नम्रता तिवारी, निर्विकार मूल्य और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।